ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है कृषि उपज की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में नवाचारों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 96वें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस का उद्घाटन किया और हम सभी जानते हैं कि इस परिषद की बहुत बड़ी भूमिका रही है कृषि क्षेत्र में नवाचार की दृष्टि से और कृषि क्षेत्र में किस तरह से उपज को बढ़ाया जाए, क्लाइमेट रेजिलिएंट उत्पादन किया जाए और लगातार दुग्ध उत्पादन में भी इस परिषद की बड़ी भूमिका रही है और भारत में जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम संस्थान हैं वो लगातार कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। कृषि में नवाचारों को बढ़ाने के लिए इस अवसर पर 40 चयनित प्रौद्योगिकियां भी जारी की गई। इन किस्मों में जैव फोर्टिफाइड या बायो फोर्टिफाइड किस्में और साथ ही क्लाइमेट रेजिलिएंट किस्में शामिल हैं। तो आज हम इसी हवाले से खेती में नवाचार पर बात कर रहे हैं और हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ एसपी सिंह कार्यक्रम में जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
धन्यवाद
सिंह साहब। अब समय आ गया है कि जब कि खेती में इनोवेशन को नई दृष्टि से देखा जाए और जब हम खेती में फसलों की बीजों की बात करते हैं तो इसमें वैज्ञानिक तरीकों से किस तरह से नए समाधानों को तलाशना बहुत जरूरी है और जैसे जो भारत में कृषि से जुड़े हुए संस्थान हैं वो किस तरह से इस मामले में नवाचार को देख रहे हैं।
टेक्नोलॉजी की और नवाचार की जरूरत कब पड़ती है? जब चुनौतियां सामने और दिखाई देने लगे, दिनों दिन गंभीर होती जाएं, ऐसे में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी मस्त हो जाती है और वैज्ञानिकों की भूमिका बढ़ जाती है। खास तौर से उस समय जब पूरी दुनिया में खाद्य सुरक्षा का संकट आसन्न खड़ा हो, एकदम सामने दिखाई दे रहा हो। भारत की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया की बात अगर हम करें तो पूरे दुनिया में आप देखेंगे तो खाद्य सुरक्षा का संकट छाया हुआ है। दुनिया के किसी न किसी हिस्से में भुखमरी और अनाज की कमी का रोना रोया जा रहा है, मुश्किलें हैं। भारत इससे अछूता नहीं होगा अगर वह आज से अपनी तैयारी तेज नहीं कर देता है। उसकी तैयारियां बहुत अच्छी हैं, पहले से तैयारियां होती जा रही हैं। हमारे साइंटिस्ट सजग हैं, सतर्क हैं, सावधान हैं, काम भी कर रहे हैं और इस दिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसके हम ICAR के नाम से जिसका फाउंडेशन डे भी था आज, जिसमें आज ढेर सारे उपलब्धियां गिनाई गई और हमें लगता है भारत सरकार की यह ऐसा बड़ा संस्थान है, कृषि मंत्रालय का एक ऐसा परिषद है, ऐसी संस्था है जो भारतीय खेती के लिए एक बड़ा स्तंभ है और इसको जितना मजबूत बनाकर रखेंगे इस देश को आने वाले दिनों में खाद्य संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे इतिहास उठाकर देखें तो जहां हम 15 मिलियन टन किसी चीज को पैदा करते थे, आज हम 20 गुना ज्यादा, 25 गुना ज्यादा पैदावार हमारी बढ़ गई, उत्पादकता बढ़ गई, उत्पादन बढ़ गया। क्यों? एक और तो आप देखेंगे कि हमारे और प्राकृतिक संसाधन घट रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन से सिंचाई यानी पानी, मिट्टी कम हो रहे हैं। दूसरी ओर खाद्यान्न की डिमांड बढ़ रही है, खाने पीने वाली चीजों की डिमांड बढ़ रही है। हमारी आबादी तेजी के साथ बढ़ रही है। जो आबादी हमारी 35 करोड़ थी, तब हमारी जो खेती थी कहीं ज्यादा थी, आज हमारी आबादी 140 करोड़ के ऊपर जा रही है और हमारी खेती धीरे धीरे श्रिंक हो रही है, लगातार घटती जा रही है शहरीकरण के चलते, औद्योगिकरण के चलते। जब डेवलपमेंट होता है तो खेती घटती है। ऐसे चैलेंजेस जब देश के सामने हो, ऐसे में सिर्फ जहां खेत घट रहे हो, पानी कम हो रहा हो, मौसम विपरीत हो रहा हो, जलवायु में परिवर्तन आ रहा हो, गर्मी की जगह सर्दी और सर्दी की जगह गर्मी पड़ रही हो, बारिश का जो वितरण है वो एकदम असामान्य हो गया हो, देखते ही देखते अचानक बाढ़ का मौसम आ जाता है, इतना पानी बरस जाता है और जब खेती को जरूरत होती है तब पानी नहीं होता है और पूरे साल तापमान बढ़ रहा है, सारे संकटों से निपटने का काम हमारा किसान तभी कर पाएगा जब उसके पास उसके अनुरूप टेक्नोलॉजी होगी। उस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए, उस तरह का सीड तैयार करने के लिए, उस तरह की सिंचाई व्यवस्था करने के लिए, उस तरह की मशीनीकरण करने के लिए हमारे साइंटिस्ट तैयार होंगे और हमारे किसानों को उससे लैस करेंगे।
आपने बहुत सारी चुनौतियों की बात की जिसके समाधान तलाशने की जरूरत है, तो ऐसे में जो तकनीकें हैं, जैसे हम उदाहरण के लिए लें, भारत में गेहूं चावल की बहुत ज्यादा खपत है, दालों का उत्पादन भी भारत में होता है और सरसों के उत्पादन को लेकर भी लगातार सरकार प्रयासरत है। ऐसे में जैसे बायो फोर्टिफाइड बीजों की फसलों की बात हो रही है, ब्रीडर सीड्स की बात होती है, तो इन सभी स्तर पर कैसे उत्पादन को बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है और कैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या तमाम जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, संस्थान हैं, वो इन तकनीकों को देखते हुए लगातार उत्पादन को बढ़ाने में प्रयासरत हैं।
देखिए हमारे देश के किसान को जो आप खेती में देंगे, जो बीज आप उपलब्ध कराएंगे, कहावत है हमारे देश में किसानों के लिए, कहा जाता किसान खुद कहता है, होए बीज बबूल के आम कहां से होए। यानी आप किस तरह का सीड देंगे, यानी सबसे पहली जरूरत होती है सीड यानी बीज। बीज किस तरह का है उसी तरह का उत्पादन होगा। आज जमाना सीड टेक्नोलॉजी पर चला गया, दुनिया सीड टेक्नोलॉजी में कई गुना आगे निकल चुकी है, उत्पादकता का लेवल कई गुना तेजी से बढ़ रहा है। कहीं न कहीं भारत सरकार को भी अपनी टेक्नोलॉजी पर, अपनी पॉलिसी पर विचार करना होगा। हमें लगता है कि आज जो फाउंडेशन डे मनाया गया, इस दौरान जरूर इस बात की चर्चा हुई कि हमें सीड टेक्नोलॉजी को कहां लेके जाना है। सीड टेक्नोलॉजी में आधुनिक टेक्नोलॉजी, परंपरागत टेक्नोलॉजी, जो हमारी परंपरागत पहले से चली आ रहे हैं, उनको कैसे संरक्षित किया जाए। दुनिया के विकसित देशों में जो टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है, उत्पादकता हमसे कई गुना ज्यादा उसकी क्यों हो जा रही है। हमें वो टेक्नोलॉजी अपनानी होगी, हमारे किसानों को इस पर विचार करना होगा, खासतौर से बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारे देश के किसान, हमारे देश के साइंटिस्ट बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन नीतिगत कई ऐसे निर्णय लेने हैं सरकार को, जो सरकार को समय रहते लेना ही होगा, जिस पर हमें लगता है कि आज साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक और जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, नीति नियामक हमारे पॉलिटिशियंस हैं, सरकार के लोग हैं और सारे लोग एक साथ ब्यूरोक्रेट्स हैं, आज यही दिन होता है फाउंडेशन डे के दिन कि हम अपने को देखें कि हम कहां चूक रहे हैं, कहां पिछड़ रहे हैं, उसमें हमें आगे बढ़ना होगा। आपने एक फिगर दी कि हमारे साइंटिस्ट आईसीएआर के वैज्ञानिकों ने इस साल इतने फसलों के लिए नए नए बीजों को इजाद किया और किसानों के लिए जारी किया कि एक किसान इसको लगा सकते हैं, और हर साल हमारा किसान ऐसे बीजों का प्रयोग करता है और साइंटिस्ट इसको पैदा करता है, तैयार करता है। कई बार मुश्किलें ये आती हैं कि हमारे साइंटिस्ट के जो तैयार किए हुए बीज हैं खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसी संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों एक बात कही थी, लगातार कई फोरम पे बोल चुके हैं कि लैब टू लैंड यानी प्रयोगशाला की चीजें, प्रयोगशाला के बीज, प्रयोगशाला की जो टेक्नोलॉजी, वो कैसे किसान के खेत तक पहुंचाई जाए आसानी से। उस सिस्टम को हमें मजबूत करना होगा, क्योंकि वो सिस्टम कहीं न कहीं भारत विविधता भरा देश है कि किसानों के खेतों तक उसे पहुंचाने को लेकर सरकार की उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें लगता है कि आज इस पर जरूर विचार हुआ होगा और आगे भी सरकार इस पर कुछ न कुछ जरूर ऐसा करेगी, ताकि जो लैब के अंदर तैयार हो रही है चीजें कैसे खेतों तक पहुंचाई जाए।
भारत की जो खेती है उसमें जैविक खेती को लेकर भी सरकार का जोर है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत के जैविक खेती के उत्पाद बड़ी संख्या में हम देखते हैं कि अब बिक रहे हैं। उसका कारण यह है कि अब जैविक खेती को लेकर एक पूरा मानकीकरण हमारे पास है। तो आप कैसे देखते हैं भारत की जैविक खेती की क्षमता को, जिससे कि आने वाले समय में ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में भारत लीड ले सकता है।
जैविक खेती और जैविक उत्पादों की पूरी दुनिया में बहुत मांग है, वैश्विक स्तर पर मांग है, और उस मांग को मेरा मानना है कि भारत सरकार उसको बढ़ावा दे रही है कि उस मांग को कैसे पूरा किया जाए। और उसमें बहुत कुछ संसाधन की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने उन किसानों को जहां पे इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, खासतौर से जैसे नॉर्थ ईस्ट का पूरा क्षेत्र एक तरह से पली पड़ा हुआ है, वहां पर रसायनों का प्रयोग न के बराबर होता रहा है। और आज भी ये देखेंगे कि पिछले करीब करीब 10 साल से सिक्किम जैसे स्टेट ने अपने को जैविक स्टेट घोषित कर दिया है, वहाँ का हर उत्पाद जैविक होता है, चाहे वो फल फूल हो, चाहे वो खाने के सामान हो, खेती की उपज हो और या मसाले हो। उसकी भारी डिमांड है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में जो डिमांड है उससे ज्यादा कहीं हमारे डोमेस्टिक डिमांड है, यानी वहाँ के किसानों को कितना लाभ हो सकता है। यानी बिना रसायनों के उत्पादन के जो उत्पाद पैदा होता है उसके मूल्य ज्यादा मिलेंगे। देखिए खेती के लिए सबसे बड़ी जरूरत थी कि मांग आधारित खेती पर जोर देना। भारत सरकार का जोर अब यही रहा है कि जिस चीज की डिमांड हो हम उसी की खेती करें, हम आंख मूंद कर वो खेती न करें जिसके दाम हमें नहीं मिलता, यानी किसान को उसका मूल्य नहीं मिलता। अब आज समझिए पूरी दुनिया में जिस चीज की डिमांड है, जैसे आपने कहा जैविक उत्पादों की बहुत भारी डिमांड है, तो हमारे जितने मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का एरिया है, झारखंड का एरिया है, देश के विभिन्न ऐसे राज्यों में जहां पर प्रति हेक्टेयर रसायनों का उपयोग बहुत कम होता है, न के बराबर होता है, वहां पर अगर हम बायो फर्टिलाइजर के प्रयोग से परंपरागत खेती को, जो उनको ऑलरेडी वहाँ के किसानों को इसकी बेहतर समझ है, उनको सिर्फ बुस्टअप करने की जरूरत है और उनके उत्पादों को बाजार तक पहुँचाने की जरूरत है। और एक बात आपने कहा कि हमारे यहाँ एक स्टैंडर्डाइजेशन हो गया है, लेबोरेटरीज हो गई है, उसको मान्यता मिल जाती है, सर्टिफिकेशन के लिए लगभग सभी जिलों में इस तरह के लैब बना दिए गए हैं जहाँ पर उनको सर्टिफाई कर करके उनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, या ऐसे स्टोर खुले हुए हैं देश के विभिन्न हिस्सों में जिस पर उनकी बिक्री की जा सकती है और उन किसानों को बेहतर मूल्य दिलाया जा सकता है। यानी जो किसान हाशिए पर थे वो किसान अचानक सुपर स्टोर में उनके उत्पाद बिकने लगेंगे। जिस दिन उनके सुपर स्टोर में उत्पाद बिकने लगेंगे उनकी हालत सुधर जाएगी, क्योंकि उनको बेहतर मूल्य मिलने लगेगा और वो स्टोर सीधे उनसे खरीद करने लगेगा सर्टिफाइड उत्पाद। इस पर भारत सरकार का पूरा जोर है और हमारे साइंटिस्ट का भी पूरा जोर है।
भविष्य की खेती की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि भारत की भविष्य की खेती का परिदृश्य कैसा होने वाला है, क्योंकि इस दिशा में अनुसंधान को लेकर भी सरकार जोर दे रही है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जैसी संस्थाएं और वैज्ञानिक इस मामले में सोच रहे हैं। जैसे खेती में रोबोटिक्स के इस्तेमाल पर जोर है, खेती का पूरी तरह से मशीनीकरण किया जाए, इस पर प्रयास जारी है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में खेती का जो आधुनिकीकरण है, मशीनीकरण है और रोबोटिक्स का इसमें इस्तेमाल है, वो कैसे भारत में एक उन्नत खेती को नई दिशा दे सकता है?
अब दुनिया जिस दिशा में जा चुकी है हमें अब उस दिशा में तेजी से बढ़ना है। वैज्ञानिक आधारित खेती पर, टेक्नोलॉजी आधारित खेती पर, भविष्य की खेती पर हमें जोर देना है। सेंसर बेस्ड खेती, रोबोटिक बेस्ड खेती, ड्रोन बेस्ड खेती, प्लास्टिक कल्चर बेस्ड खेती, यानी मानव संसाधन जो परंपरागत तरीके से मोटे मोटे उपकरणों से जो खेती होती थी, अब उससे उत्पादकता बढ़ाने की संभावना, एक तरह से हम स्थिरता की ओर बढ़ रहे हैं, हम उससे अब उत्पादकता बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। अगर हमको बहुत आगे बढ़ना है तो हमें सेंसर बेस्ड खेती, मैं गया था देख के आया इसराइल में, हजारों एकड़ खेती, मतलब अंगुली पर गिने जाने हुए लोग, मुश्किल से दर्जन और डेढ़ दर्जन लोग एक जगह लेबोरेटरी में बैठकर पूरी खेती को कंट्रोल कर रहे थे। पूरी खेती उन्नत खेती तैयार हो रही थी, फर्स्ट क्लास की खेती। जब खेती को जरूरत होती है पानी की तब उसे पानी मिल जाता है, जब खेती को जरूरत होती है किसी तरह के फर्टिलाइजर की, किसी न्यूट्रिएंट्स की, किसी तरह का रोग लगने वाला होता है तो सेंसर बेस्ड आधारित उनके सिस्टम को पता चल जाता है कि इस खेती में किस पोर्शन में कौन सा रोग लगने जा रहा है, किस जगह की मिट्टी को पानी की कमी है, मतलब पूरी जानकारी सेंसर बेस्ड। इसी तरह रोबोटिक, तमाम ऐसी जगह है जहां पर आदमी वो काम नहीं कर सकता जो रोबोट कर लेता है। ऐसे ही जैसे हम फर्टिलाइजर का और कीटनाशकों का जो प्रयोग करते हैं या न्यूट्रिएंट्स का जो उपयोग करते हैं, छिड़काव करते हैं, वो ये ट्रेडिशनली हुआ करता था, दानेदार यूरिया, दानेदार खाद, मैनुअली छिड़काव होता था, उसमें नुकसान ज्यादा होता था, एक्यूरेसी नहीं होती थी, किस फसल को, किस पौधे को क्या मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता था। अब आज की तारीख में ड्रोन बेस्ड खेती जब होने लगी है तो ऐसे में जो हमारी, सोचिए कि नैनो यूरिया और नैनो फर्टिलाइजर हमारे देश में इजाद हो चुकी है, पूरी दुनिया में पहला देश है जहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी आधारित ऐसी खाद आ चुकी है जो एक 500 ml की बोतल में करीब समझिए एक बोरी यूरिया के बराबर का ताकत आ गई है, और उसको अगर पानी में मिलाकर और ड्रोन में डालकर उसका छिड़काव किया जाए तो यानी कितनी लागत कम होगी और एक्यूरेसी कितनी होगी कि खेत के हर हिस्से को बराबर का छिड़काव होगा, बराबर का उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। इसी तरह से प्लास्टिक बेस्ड, प्लास्टिक कल्चर, हमारे यहाँ पानी कम हो रहा है और गर्मी बढ़ रही है, फसलों को नमी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, लेकिन जो हमारी व्यवस्था अब तक की टेक्नोलॉजी है वो फ्लडिंग करते हैं, हम पानी खेत में भर देते हैं नाली लगाकर, जिसका कोई फायदा नहीं होता।
तो जैसा कि आपने प्रधानमंत्री के कथन को कोट किया था कि प्रयोगशालाओं से जमीन पर किसान तक खेती के प्रयोग पहुंचे, तो निश्चित रूप से हम भारत में आधुनिक और उन्नत खेती के परिदृश्य को देख सकते हैं और इसी दिशा में प्रयास जारी भी हैं, और आने वाले समय में हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार की नीतियों और जो संस्थाओं के प्रयास, वैज्ञानिकों के अनुसंधान हैं, उसके चलते खेती में नवाचार बढ़ेंगे और भारत, क्योंकि कृषि प्रधान देश रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर बहुत ज्यादा निर्भर है, तो आने वाले समय में एक उन्नत कृषि से हम देश को और समृद्ध होता हुआ देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब, आप कार्यक्रम में जुड़े और अपने विचार आज के इस विषय पर रखे, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद कमल।
अभी आप सुन रहे थे कृषि उपज की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में नवाचारों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।